खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि कल हम देख रहे थे, सीख रहे थे कि खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है। और वो वहाँ पर हुक्म के तौर पर कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ। और हमने कल देखा था कि रूह से मामूर ज़िंदगी में कितना फ़ायदा, कितनी बरकत है। और हमने कुछ मनफी मिसालों पर गौर की थी जो कलाम खुदा में हम सब की तरक्की के लिए और रहनुमाई के लिए लिखी गई। हमने देखा था हनन्याह और सफीरा की ज़िंदगी को कि वो किस तरह खिदमत के लिए इकट्ठे तो हुए, लेकिन उनका जो मकसद था वो बदल गया और उन्होंने खुदा के पाक रूह से झूठ बोला। और इसी तरह हमने देखा पुराने अहदनामा में बहुत सी दूसरी जिंदगियों पर, सैमसन की ज़िंदगी, दाऊद की ज़िंदगी और फिर बहुत से दूसरे खादमों की ज़िंदगी पर गौर की। इसलिए हमने सीखा था कि हम ईमानदारों को, खामद और बीवी को एका करने की ज़रूरत है खुदा के कलाम में उन भलाई की बातों पर, ताकि भलाई से भलाई पैदा हो, ना के बदी पैदा हो। इसलिए आज हम गौर करेंगे चंद और मिसालों पर जो मुस्बत हैं, मनफी नहीं, मुस्बत है, जिनसे हम फलदार ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया में हमें जिक्र मिलता है परसिकला और अकूला, ये वो ख़ानदान था जिन्होंने पालूस की बारहा मदद की थी। ये ख़ानदान खामद और बीवी यहूदी थे। तारीख बयान करती है बहुत से हवालों की बुनियाद पर कि वो पालूस के हम खिदमत थे, खामद और बीवी वो उसके मददगार थे। और यहाँ तक बयान किया गया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना सर पालूस के लिए दिया हुआ था कि उसकी जगह हम कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं। सो हमें इस ख़ानदान से, हमें इस फैमिली से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, ताकि हम यशवा की वो बात जो बहुत देर पहले यहूदियों के सामने कही गई, जब उन्होंने बुत परस्ती में शामिल होकर, मुबतला होकर बहुत से माबूदों की परस्तिश करना शुरू कर दी थी, और उसने कहा कि रही अब मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदा की परस्तिश करेंगे। तो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इमाल की किताब, उसका 18 बाब, उसकी पहली 4 आयात में हमें जिक्र मिलता है। फिर इसी 18 बाब में 3 बार हमें परसिकला और अकूला का जिक्र मिलता है। लेकिन आज हम थोड़े वक्त में अपने फ़ायदा की और अपनी रूहानी तरक्की की बातों पर गौर करेंगे। यहाँ पर पालूस रसूल जब अथीने में है, वहाँ पर अथीने के लोगों को, उनके शहर में जब फिर रहा है, तो उनके शहर को फिरते हुए देखते हुए जब वो नतीजे पर पहुँचा, तो अथीने के लोगों से बात करते हुए उनको कहता है कि तुम लोग बहुत से माबूदों को मानने वाले हो, तुम्हारे शहर में मैंने बहुत सी कुर्बान गाहों को देखा, इबादत गाहों को देखा, और एक पर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। सो उनसे जब बातचीत कर चुका है, तो 18वें बाब में यहाँ पर पालूस रसूल के इस सच्चाई पर, इस बात पर गौर करते हुए परसिकला और कूला ने क्या की है, तवज्जो की है। 18वां बाब उसकी पहली है। इन बातों के बाद पालूस अथीने से रवाना होकर करंथस में आया, और वहां उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतूस की पदेश था, और अपनी बीवी परसिकला समेत अतातिया में नया नया आया था, क्योंकि क्रूदास ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। पास वो उनके पास गया, और चूंकि उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा, और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था। और वो हर सबत को अबादखाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। पालूस रसूल अथीने से खुदा का कलाम सुनाकर करंथस को जाता है और करंथस में इस फैमिली को मिलता है, खामन का नाम अकूला और बीवी का नाम परसिकला। उनके साथ रहता है, उनके साथ खिदमत करता है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे कि खामन और बीवी की जिंदगी जब वो मुस्बत तौर पर खुदावंद खुदा की खिदमत करते हैं तो फलदार साबित होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खानदान, इनका काम क्या था, खैमे बनाने का, जिसे आज हम तंबू कहते हैं, झोपड़ियाँ भी कहते हैं। सो पालूस रसूल भी इस हुनर से वाकिफ था, वो भी इस काम को जानता था। सो परसिकला और अकूला करंथस में थे और वहाँ पर पालूस रसूल ने उनके साथ वक्त गुजारा। सो आए चंद एक हवाला जात पर गौर करें कि परसिकला और अकूला किस तरह गाहे बगाहे पालूस रसूल की खिदमत का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहे हैं, ताकि हम मुस्बत तौर पर इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी में देखें, जब खुदावंद खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदार और रिश्तेदारों को और जो कुछ तेरा है सब को छोड़ और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ पर जा। और क्या हुआ, क्या इब्राहिम अकेला चल पड़ा? नहीं, उसने अपना सब कुछ छोड़ा, अपनी बीवी को और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ तैयार हुआ। इसलिए मेरे साथ निकाले रोमियो 16 बाब, रोमियो 16 बाब उसकी 3 आयत में फिर पालूस रसूल, इमाल की किताब, रोमियो की किताब, ये वो इब्तदाई किताबें हैं, वो कह सकते हैं कलाम पाक के हिस्से हैं, तारीख है, जिसमें बहुत से ईमानदारों का जिक्र, उनके कामों का, उनकी ज़िंदगी में तरक्की की बातों का जिक्र मिलता है। सो रोमियो 3 बाब जब हम उसकी 16 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर पालूस रसूल रोमा की कलीसिया को, रोमा की कलीसिया के ईमानदारों को ये बात कहता है। परसिकला और अकूला से मेरा सलाम कहो, रोमियो 16 बाप उसकी 3 आयत, वो मसीह यसु में मेरे हम खिदमत हैं। वो पालूस के मददगार थे, हम खिदमत थे और वो कहता है हमको मेरा सलाम कहो। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, यानी कि किसी के लिए कह देना कि तेरे लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। सो इस खामद और बीवी ने पालूस रसूल के लिए ये वाज़ह तौर पर पालूस को बताया हुआ था कि तेरे लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियों में भी उनकी शुक्रगुजारी है। पालूस रसूल ही की ज़िंदगी में नहीं उनकी मदद थी, बल्कि गैर कौमों में भी जो यहूदी थे, जो गैर यहूदी थे, यूनानी थे या कोई और कबीले से थे, वो भी उनके वसीला से क्या करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी, क्योंकि उनकी खिदमत के बायस बहुत सी जिंदगियों को खुदा यीशु मसीह की पहचान तक क्या मिली है, रसाई मिली है, पहुंचने का हिस्सा मिला है। और फिर कहता है और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। वो पालूस के मददगार है, गैर कौमों में खिदमत कर रहे हैं और फिर उनका अपना एक चर्च भी है जिसे कलीसिया कहते हैं, कि उनके घर में वो इकट्ठे होते हैं जैसे घरों में इबादत की जाती है। इब्तदाई दौर में बड़े बड़े गिरजे नहीं थे, इब्तदाई दौर में लोग जहाँ कहीं भी इकट्ठे होते थे उसे गिरजा कहा जाता था, उसे कलीसिया कहा जाता था, उसे चर्च कहा जाता था। आज जदीद दौर में बिल्डिंग को चर्च कहा जाता है और कलीसिया को कहा जाता है कि जिनकी कोई हैसियत नहीं, سو ابتدائی دور میں کلیسیا یعنی کہ خدا کے نام سے اکٹھے ہونے والے، خدا کے نام سے کہلانے والے لوگ۔ صحیح چرچ کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا، بلڈنگ، وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیکل، گرجا گھر۔ چرچ بھی انگلش میں استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر چرچ اکٹھا ہوتا ہے۔ سو ان کے گھر کی کلیسیا کو بھی سلام کہو، پیار دو، اور ان کی بہت سی اور ہمیں زندگی کی باتیں ملتی ہیں۔ رومیوں کے خط میں، کرنتھیوں کے خط میں، ایمال کی کتاب میں، پھر تموتھیس کی کتاب میں، خط میں ہمیں پرسکلا اور اکولا کا ذکر ملتا ہے، وہ خدمت گزار خامد اور بیوی۔ اس لیے ہمیں اپنی بائبل کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسی ہستیوں کو جانیں، کیونکہ کل ہم نے منفی طور پر دیکھا تھا حنانیہ اور سفیرہ کو، ہم نے داؤد کی زندگی کو دیکھا کہ اس نے کس طرح غلط فیصلہ کیا، ہم نے سیمسن کی زندگی کو دیکھا کہ اس نے کس طرح غلط فیصلہ کیا۔ آج پرسکلا اور اکولا ہے۔ اگر ہم ترقی پانا چاہتے ہیں تاکہ جیسے کتاب مقدس میں اس شادی شدہ جوڑے کا نام آیا ہے، ویسے ہی آسمانی کتاب میں جو کہتے ہیں کہ کتاب مقدس جس میں ہمارے نام لکھے گئے ہیں، ایک کتاب حیات ہے اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جو ایمانداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو ان کے کاموں کے موافق اجر دیا جائے گا۔ سو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑی ناکامی کلیسیاؤں میں یہی بات پر ہے، خامد اور بیوی کا اتفاق نہیں بلکہ نا اتفاقی۔ بے شک ہم صبح کو کام پر جاتے ہیں، لیکن ہفتے میں کم سے کم ایک بار کلیسیا کے ساتھ اتوار کی عبادت میں خامد اور بیوی، زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ اور پھر گھر میں کم سے کم ہر روز میں بھی ایک وقت کے کھانے پر اگر ہو سکے تو بیٹھ کر خامد اور بیوی اور بچے کیا کریں؟ خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہم سارا سے اور ابراہیم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم نوح اور اس کے خاندان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اور بہت سے خاندانوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، نیگیٹو بھی اور پازیٹو بھی، منفی بھی اور مثبت بھی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ کل کے خادم کی زندگی، خادم اور خادمہ بہت اہم ہیں۔ ارد گرد کے بھائی یونس گواہ ہے، ہم جا رہے ہیں، کیسے ہیں جی خامد اور بیوی؟ خامد اور بیوی گاہے بگاہے۔ اس لیے خواہ ہم خامد اور بیوی ہیں، خواہ ہم کلیسیا ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، ہمیں اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسل برکت کا باعث بنے۔ تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے ایسی ہستیوں پر غور کر سکے جو برکت کا باعث ہے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 16 باب، 16 باب اس کی 19 آیت۔ یہاں پر بھی پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو پرسکلا اور اکولا کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ 19 آیت میں لکھا ہے، آسیا کی کلیسیا تم کو سلام کہتی ہے، اکولا اور پرسکلا اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں۔ ابتدائی دور کی یہ سچائیاں، یہ سادہ سا سچ، پالوس رسول جب خط لکھتا تھا تو خط میں وہ ان تمام لوگوں کا، میرے رشتہ داروں کی طرف سے، ایمانداروں کی طرف سے، ہم خدمتوں کی طرف سے تمہیں سلام، تمہیں دعا، تمہیں پیار ملے۔ آج خط کا دور ختم ہو چکا ہے، آج ٹیلی فون اور ایس ایم ایس کا دور آ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی इन सच्चाइयों पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब किसी से ईमानदारों से जब वो मुलाकात करते थे तो एक दूसरे को खत देकर कहते कि फलां फलां जो खुदा की खिदमत में है वो तुम्हें सलाम तुम्हारी सलामती चाहता है। सो हमें इस जोड़े से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये दुआगो थे, मेहनत करने वाले थे, खिदमत करने वाले थे खुदा की कलीसिया को और खुदा की कलीसिया की रहनुमाई करने वाले। उनके लिए इकट्ठे होने की जगह हो सकता है कि इसका हाल हम यहाँ यूँ निकाल सकते हैं कि हम किसी ना किसी घर में छोटी छोटी इबादतों का इंतज़ाम करें ताकि एक दूसरे के साथ हमारा और मिल बैठना पड़े, ताकि और एक दूसरे को जाना पहचाना जाए, ताकि हम कलीसिया या कलाम की जो रूह से है मसीही ज़िंदगी को सिर्फ खेल तक ना रखें कि मैं चर्च गया चर्च गई बात ख़त्म। हमें इब्तदाई कलीसियाओं से इन सच्चाइयों को सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी फलदार चाहते हैं तो हमें बहुत सी सच्चाइयों पर गौर करना होगा और खुदा खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी होगी। खामद और बीवी का जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई जुदा ना करे। सो हमें दुआ में बहुत दफ़ा लेने देने में और बहुत सी दूसरी बातों में मिलकर हमारी अक्सर घर में यही बातचीत होती है। मैं और कैरी अगर कोई भी फैसला करते हैं तो हम उस पर गुफ्तगू करते हैं, उसका नतीजा देखते हैं, क्या कुछ चर्च को देना है, क्या कुछ किसी को देना है और दुआ करते हैं खुदावन्द तेरी क्या मर्जी है। आज ये भी कमी पाई जाती है बहुत दफ़ा हमारी मसीही शादीशुदा ज़िंदगी में कि जब हम देते हैं तो एक को ही पता होता है दूसरे को पता ही नहीं, और या फिर फिक्र ही नहीं देती। याद रखे इब्तदाई कलीसियाओं में हनन्याह और सफीरा के पहले जो लोग थे इमाल की किताब में जिक्र मिलता है कि सब ने अपना हदिया चंदा क्या किया इकट्ठा किया। सो खामद और बीवी इस जुज पर भी बात कर सकते हैं कि हमें क्या ठहराना है खुदा के हुजूर, कितना वक्त देना है खुदा के हुजूर, कितना वक्त अपने बच्चों को देना है, कितना वक्त में दुआ करनी है। तो हम इन सच्चाइयों पर जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत दफ़ा बड़ी बातों में खोकर छोटी बातों को भूल जाते हैं। दुआ, हदिया शुक्रगुजारी, बच्चों के साथ दुआ, खुदावंद की दी हुई नेमतों के लिए दुआ। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं, रोटी आई पहले या तो खा, रोटी आई बाद चो तो खा पहले लई, शुक्रगुजारी नहीं, शुक्रगुजारी नहीं। यीशु मसीह को जहाँ कहीं भी हम रोटी तोड़ते हुए देखते हैं यही कलमात उसके मुंह से निकलते हैं, मबारक है तू खुदावंदा खुदा, खुदावंद तेरा शुक्र हो, ए बाप तेरी तारीफ हो। सो यीशु मसीह, हम इन छोटी छोटी बातों को बहुत दफ़ा अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। सो खामद और बीवी की ज़िंदगी बहुत ही अहम है खिदमत में, चाहे डीकन की खिदमत है, पासबान की खिदमत है, मनाद की खिदमत है, या फिर सिर्फ हम कलीसिया हैं मददगार हैं। ज़रूरी नहीं कि डीकन की ही या एल्डर ही की या पासबान ही की बीवी नज़र आए खामंद के साथ, इनका कोई अहदा हमें नज़र नहीं आता। पर सिकला और कूला क्या कहते हैं पालूस रसूल, मेरे हम खिदमत, हम खिदमत ही कहा ना जी, और वो दोनों मिलकर खिदमत करते हैं। दुआ, रोज़ा, शुक्रगुजारी, रहनुमाई जब खामद और बीवी करेंगे तो आसमान के फरिश्ते हैरान होंगे, बुरे फरिश्ते भी और अच्छे भी। बुरे से मुराद यानी कि बाइबल मुकद्दस उनको बुरे कहती है जो गिराए गए हैं, मुजरम फरिश्ते जिन पर सजा का हुक्म हो चुका है, अच्छे फरिश्ते जो खुदा के फरिश्ते हैं जो उसकी परस्तिश उसका पैगाम उसकी ताबेदारी करते हैं, उनके लिए हम क्या कहें ठहरेंगे गवाही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी गवाही, बेशक आप शादीशुदा नहीं हैं आपकी ज़िंदगी फिर भी फरिश्तों की तवज्जो हासिल कर सकती है। किसी ने कौल कहा है कि कलीसिया जब रूहुल कुद्दस से मामूर ज़िंदगी ख़ानदान गुजारते हैं तो आसमान के फरिश्ते ख्वाहिश करते हैं कि उस ख़ानदान के साथ ज़िंदगी बसर की जाए। इसलिए आज जो कुछ हमने सुना है इस पर गौर करें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम सुनते हैं।